ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमः भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय दो असुर राज हिरण्यकशिपु श्लोक संख्या 57। इसकी पहले श्लोक में भी तात्पर्य नहीं है, 56 श्लोक में, 56 नंबर श्लोक मैं पढ़ लेता हूँ अनुवाद के साथ, 57 नंबर पढ़ लिया, दो श्लोक साथ में। एवं कुलिंगं विलपन्तमारत प्रिया वियोगात् पुरनम अश्रुकंठम सैव तं साकूनिकः शरेण विव्याधकाल प्रहित विलीनः। अपनी पत्नी की क्षति के कारण कुलिंग पक्षी आंखों में आंसू भरकर विलाप कर रहा था, तभी काल के आदेशों का पालन करते हुए अत्यंत सावधानी से दूर छिपे बहेलिए ने अपना तीर छोड़ा, जिसने कुलिंग पक्षी के शरीर को बेधकर उसे मार डाला। श्लोक जो ब्लॉक में रखा गया, एवं यूयम अपश्यन्त्य आत्मा उपायम अबुद्धयः नयनम प्राप्स्यथ शौचन्त्य पतिं वर्ष शतैरपि एवं यूयम् अपश्यन्त्यः आत्मा अपायम् अबुद्धयः नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्ष शतैरपि एवं यूयम् अपश्यन्त्यः आत्मापायम् अबुद्धय नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्ष शतैरपि। शब्दार्थ एवं, इस प्रकार, यूयम् तुम सब अपश्यन्त्यः न देखकर आत्मापायम् अपनी मृत्यु को अबुद्धय हे मूर्खों न नहीं एनम उसको प्राप्स्यथ प्राप्त करोगी सोचयन्त्यः शोक करती हुई पतिम अपने पति के लिए वर्ष सतही सकड़ों वर्ष तक अपि भी। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो कि अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृता पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकते और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। दोहराइए। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो कि अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती हो कि यदि तुम सैकड़ों वर्षों तक भी अपने मृत पति के लिए शोक करो तो भी तुम उसे जीवित नहीं कर सकती और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तात्पर्य, एक बार जमराज ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा, इस संसार में आश्चर्यमय वस्तु क्या है? महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाभारत के वन पर्व से 313 अध्याय के 116 नंबर श्लोक को उद्धृत करते हुए महाराज युधिष्ठिर ने कहा, महाराज युधिष्ठिर की उवाच है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इह जमालयम् शेषास्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यतः परं। लाखों जीव प्रतिक्षण मृत्यु को प्राप्त होते हैं किंतु मूर्ख जीव तब भी अपने को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु की तैयारी नहीं करता। इसी संसार के सबसे आश्चर्यमय वस्तु यही है। प्रत्येक व्यक्ति को मरना होता है क्योंकि वह पूर्णतया प्रकृति के वश में होता है, फिर भी हर व्यक्ति अपने को स्वतंत्र मानता है। वह जो चाहे सो करता है और वह कभी मरेगा नहीं अपितु सदा जीवित रहेगा। तथा कथित विज्ञानी विविध योजनाएं बना रहे हैं जिससे जीव भविष्य में सदैव जीवित रहेंगे, किंतु जब वे ऐसे वैज्ञानिक ज्ञान में लगे रहते हैं तभी जमराज उन्हें उनके तथाकथित शोध कार्य से छीन लेता है, हैं? अर्थात उनको उनकी मृत्यु हो जाता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग तो ढूंढ रहे कि मृत्यु का जो समस्या है इसको समाधान करके सबको अमर बना देंगे, लेकिन वो ऐसे सोचते सोचते जो व्यस्त रहते अपने लेबोरेटरी में तो काल इनको क्रश कर लेता, वो सब मारे जाते हैं। एवं यूयम अपश्यन्त्यः आत्मा अपायम अबुद्धय नैनं प्राप्स्यथ शोचन्त्यः पतिं वर्ष शतैरपि। इस प्रकार छोटे बालक के वेश में जमराज ने सभी रानियों को बताया, तुम सब इतनी मूर्ख हो कि अपनी मृत्यु को भी नहीं देख रही हो। अल्प ज्ञान के वशीभूत होकर तुम यह नहीं जानती कि यदि तुम सैकड़ों वर्ष तक भी अपने मृत्यु पति के लिए शोक करो तो भी तुम उससे जीवित नहीं कर सकते और तब तक तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तो जन्म के साथ साथ एक सत्य निहित है, क्या? जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ये कहानी कौन बोल रहा है? कौन कह रहे हैं? हिरण्यकशिपु उवाच है। हिरण्यकशिपु सुना रहा है कहानी। किसको सुना रहा है? किसको सुना रहे हैं? हिरण्याक्ष की पत्नी, क्या नाम? वृषाभानु। और उसके भातीजे भी बैठे हैं, हिरण्याक्ष के पुत्र हैं, उनकी माँ हैं, कौन? दीति। ये सब सुन रहे हैं प्रवचन बैठ के। और व्यासाश्रम बैठकर कौन प्रवचन कर रहे हैं? हिरण्यकशिपु। लेकिन हम हिरण्यकशिपु के अनुजाई नहीं है, तो हिरण्यकशिपु की प्रवचन चल रहा है। और देखिए वो कितनी, पहले तो भगवद्गीता का पूरा प्रवचन दिया था, पहले अब सुन के आए सो हैं, सब कुछ पता है, राक्षसों पर सब कुछ फिलोसफी पता रहा था, लेकिन आलोचना अपना जो प्रैक्टिकल उतारने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है जीवन में। तो उन्होंने सुना रहा है, मैंने सारे कहा कि जब हिरण्यक्ष की वध हो गया किसके हाथ से, बड़ा भगवान के हाथ से, तो भाई के लिए थोड़ा सारा परिवार लोग सब शोक करते थे, ये इनको सब देखा कि सभी लोग ऐसे ही रोते रहेंगे तो इनको सांत्वना कौन करेगा, मैं स्वयं इनको सब सांत्वना करना पड़ेगा। तो सभी को बैठाकर कहा कि ऐसा ही शरीर तो नाशवान है, हैं भगवद्गीता सुना है, भगवान ने जैसे गीता में कहे देही नवस्मिन जता देहे कुमारंग जोबरंग जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र नमू, ये होती है शरीर ऐसा ही, कुमार अवस्था से फिर कैशोर अवस्था, जौवन अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, बुद्धावस्था को प्राप्त करके अंत में नष्ट ही हो जाता है, एक दिन तो शरीर नाश होने वाला है। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति है वो इसके लिए शोक प्रकट नहीं करते हैं। कहकर उनको समझाया कि एक शोक ऐसे ही, उसको समझाने के लिए फिर कहानी कहने लगा, एनालॉजी वो स्टोरी बताकर उनको समझाना चाहता था। इसलिए जो सुजज्ञ राजा सुजज्ञ की कथा कहा, किस प्रकार सुजज्ञ युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते करते शत्रुओं के हाथ से उसकी मृत्यु हो गई, शत्रुओं के बाणों से इसके शरीर पूरे छिन्न भिन्न हो गए थे, भिन्न भिन्न अंग प्रत्यंग पूरे मुख विकृत हो गया था, और उसके रानियां जाकर उसके घीर के बैठे थे उसी सब को, अपने पति युद्ध क्षेत्र में ही सुजज्ञ की पत्नियां अपने पति के शरीर को घीर कर बैठे हुए थे और सब विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो उनकी इतनी जोर से वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे कि वो ध्वनि कहाँ तक सुनाई पड़ता था, जमलोक तक। तो इसलिए जमराज ने देखे कि उनको सब शांत करने के लिए उनकी थोड़ा दया हुआ, तो उन्होंने छोटा बालक की भेष धारण करके, अबोध बालक एक छोटा बालक भेष धारण करके उनके पास में आए और इनको कहने लगे कि आप लोग कैसे सो मूर्ख हो, देखो मेरा तो कोई मेरे माँ बाप भी नहीं है, मेरे माँ भी पिताजी माता जी जंगल में मुझे छोड़ दिए थे, लेकिन मैं ऐसे ही अकेले ही जंगल में भटकते भटकते मुझे कोई खाया नहीं, क्या शेर या बाघ या कोई हिंसा जंतु मुझे आक्रमण नहीं किया, भगवान की इच्छा से मैं सुरक्षित हूँ, भगवान ही सबको लालन पालन करते, सबकी देखभाल करते हैं, हैं। तो ऐसे ही उन्होंने इनको हटात आकर इनकी उपस्थिति में सब कहते कहते ये प्रवचन चल रहा है, अभी वही प्रवचन आगे बढ़ रहा है कि जमराज ये श्लोक में कह रहे कि आपके पति तो ऐसा ही ऑलरेडी जीवात्मा उसके शरीर को छोड़ चुका है, और आप ऐसा ही लाखों करोड़ों वर्ष साथ रोने पर भी ये जीने वाला फिर जग की उठने वाला नहीं है। इसकी पहले उन्होंने फिर इसको समझाने के लिए और एक कहानी बीच में कहे, कुलिंग पक्षी की कथा है, दो मादा पक्षी और नर पक्षी दोनों किस प्रकार मैंने घूमते घूमते उड़ते उड़ते आते थे जंगल में, तो वहाँ पर बह लिया, अपना जाल बिछा कर रखा था और जाल के अंदर कुछ क्या डाला था, कुछ दाना डाल दिया था पक्षी, तो उसमें आकर्षित हो गया, कौन मादा पक्षी आकर्षित होकर उस जब गया जब उसको खाने के लिए दाना खाने के लिए तो वो फंस गया जाल में, और वो चिल्लाने लगी, उसका पैर तो फंस गया तो निकल, तो इसको देख कर ये रो रहा था, कौन जो नर पक्षी उसकी पति था, तो वो रो रहा था बेचारा, कह रहा था कि मेरा पत्नी फंस गई, अभी मेरे सहायता के लिए रो रही है, मैं कुछ करने के लिए समर्थ नहीं हूँ, ये विधाता मेरे पत्नी को लेकर क्या, ये छोटा सा पक्षी को लेकर क्या इसको लाभ मिलेगा, हैं अभी क्या करूँ मेरे, वो विलाप करने वो बैठकर भूखे में विलाप कर रहा था, सोच रहा था कि घोंसले में छोटे छोटे बच्चे उसके उनके जो छोटे छोटे बच्चे घोंसले में हैं वो भी प्रतीक्षा करते होंगे किसके लिए, माँ के लिए, माँ कुछ दाना लेकर खाद्य लेकर उनको तो खिलाएगी, अभी वो बड़े भी नहीं हुए घोषाले के अंदर है, और मेरे पत्नी की ऐसी स्थिति पर मेरा स्वयं का क्यों मृत्यु नहीं हो जा रहा, ऐसा ही मैंने दुख को देखने का अपेक्षा ऐसा ही मेरा भी मृत्यु हो जाना चाहिए, ऐसे सोचते सोचते उन्होंने बैठकर आंख से अश्रु, उसकी आंख से भी अश्रु टपकता था, किसका नरपक्षी का, वृक्षे में बैठकर ऐसा ही सोच रहा था, पांख की आंख से अश्रु है, तो उस सुजग में शिकारी जो छुपे के था वो तीर मारा किसको, उस नर पक्षी को, तो उसको एक तीर में फिर वो भी मरकर वहीं गिर पड़ा, उसका पत्नी के मृत्यु का पहले इसका मृत्यु हो गया। तो ये कहानी जमराज ने कहे थे सुजोग्यन की पत्नी को, और उसको फिर दोहरा रहा था कौन, हिरण्यकशिपु। तो आज के श्लोक इसी के ऊपर है, एवं यूयम अपश्यंतः। आप लोग देख नहीं पा रहे किसको, आत्मा अपायम, आपने मृत्यु को भी नहीं देख पा रहे, इसलिए तुम लोग सब मूर्ख हो, अबुद्ध हो आप सब मूर्ख हो, जबराज के सब मूर्ख हो, क्योंकि आपने मृत्यु को भी तुम लोग देख नहीं पा रहे हो। अभी देख रहे कि साक्षात तुम्हारे पति का मृत्यु हो गया। तो उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है। जब हम शरीर को स्वीकार किए तो शरीर को एक दिन त्यागना ही पड़ेगा, ये सबसे निराट सत्य है। कोई इसको स्वीकार करे, स्वीकार करने थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये सत्य ही है। भगवान ने गीता में कह दिया कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, शरीर को त्यागना ही पड़ेगा ने? लेकिन हम इस सह रहस्य को नहीं समझ पाते हैं, शरीर की अंतिम गति क्या होने वाला है। ये शरीर एक दिन, जिस शरीर को हम इतनी क्या सजावट कर रहे हैं, इसको स्नान करके वैसे कई प्रकार की क्या कॉस्मेटिक लगाते हैं, इसको सजावट करते हैं, बहुत कुछ है, बार बार आईना में मुख को देखते रहते हैं, और कितने प्रकार करने पर भी अंत में ये शरीर एक दिन छूट जाएगी। और अंत में इसकी तीन गति, जब शरीर छूट जाता है तीनों गति हो सकता है इसका, क्या जैसे भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में लिखे कि इसको लेके जब सब श्मशान में फेंक देता है, कौन खा जाता है इसको, सियाला सुगाला बिल्लू कुकुर सुगाला आदि, आमारा सब लया महोत्सव करीबे आनंदित होया। ये कुत्ते और सियाल सब शरीर को लेकर क्या बनाएंगे, फिस्ट बनाएंगे, हैं, फेंक दिया जाएगा ऐसा ही, और गीत उसके साथ में गीत भी आएंगे, तो वो बड़ा फिस्ट बनाएंगे, उनके लिए बहुत बड़ा फिस्ट बनेगा। नहीं तो यदि इसको जला दिया लेकर श्मशान में, ये क्या हो जाएगा, राख बन जाएगा, हैं, जला गया जलने के बाद। और वही जो पुत्र को आप लालन पालन किया था बहुत मैंने जीवन काल में, मुख में आग कौन देता है, वही लेकर आपका जीव जीव को खींच के वहीं आग डालेगा, कहाँ मुख में, हैं, वही आग देगा मुख में, ये शरीर फिर जल के राख बन जाएगा। हैं, यदि इसको जमीन के अंदर गाढ़ा दे दिया समाधि, तो क्या होगा, ये सड़ के सब कीड़े को अंदर से खा जाएंगे, सड़ जाएगा पूरे। हैं, और जो सियाल गीध है इसको खा जाएंगे, तो वो खा के फिर उनकी तट्टी बन जाएगा गीध सियाल की, पानी में फेंक दिया मछली कछुआ इसको खा जाएंगे। जो शरीर का ये अंतिम गति है, और वो शरीर के लिए हम सभी क्या गधे के समान है, शरीर परिश्रम करते रहते हैं। ये शरीर और शरीर के संबंधित जितनी सो परिवार वर्ग है, संबंधियां, ये सभी को मेंटेन करने के लिए हम इतनी कठोर परिश्रम जिंदगी में करते रहते हैं, गधे के समान गर्दवे समी करी परिश्रम। कहा लागे ना बुझी लो, किसीलिए परिश्रम कर रहा हूँ इसको नहीं समझा, किसीलिए परिश्रम कर रहा हूँ, इतनी कठोर परिश्रम कर रहा हूँ, और बैंक बैलेंस पढ़ाते जा रहा हूँ, बैलेंस बढ़ेगा फिक्स, ये कितना चिंतन कर रहा हूँ, बहुत कुछ हम प्लान बनाते हैं लेकिन एक क्षण में सभी प्लान समाप्त हो जाता है, काल सब कुछ समाप्त कर देती है। तो उसी बात जमराज ने छोटे बालक के रूप में इनको समझा रहे हैं कि रानियों को कि बता रहे हैं कि तुम लोग इतनी मूर्ख है कि आपने मृत्यु को भी नहीं देख पाते हो। जैसा तुम्हारा पति का मृत्यु हो गया, एक दिन तुम्हारा भी मृत्यु हो जाएगा। इसलिए वो कहे पहले कि वो जो नर पक्षी ने बैठकर विलाप कर रहा था मादा पक्षी के लिए, तो उसी का मृत्यु हो गया, फिर वो बहलिया उसको तीर मारकर उसको भी गिरा दिया, उसको भी मृत्यु प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम भी ये संसार में विलाप करते करते कभी हमारी मृत्यु हो जाता है, हम इसको देख नहीं पाते, और हम कई प्रकार के प्लान बनाते रहते हैं इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए, शरीर को भोगने के लिए, हैं, लेकिन हम इसी जो निपट सत्य इसको देख नहीं पाते हैं कि ये शरीर का एक दिन नाश हो जाने वाला है। और शौक उन्होंने इसलिए जमराज ने कह रहे कि सैकड़ों वर्ष तक आप यदि इसी रोते रहोगे, नैनं प्राप्स्य थ सोचन्त्य पतिं वर्ष सतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक जैसे अपने पति के लिए सोचते रहोगे रोते रहोगे, फिर भी आपकी पति वापस नहीं आने वाला है, इस शरीर में वापस नहीं आने वाला। तो इसलिए जो प्रकृत कर्तव्य है, हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है, भक्ति विनोद ठाकुर कहते क्या करना चाहिए, दुर्लभ मानुषंग जन्म लभिया संसारे कृष्ण ना भजिनु दुख कहिब कहारे। ये मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान श्री कृष्ण की भजन के लिए मिला है, और यदि हम भगवान की भजन न करके इंद्रिय तृप्ति में समय को बिता रहे हैं तब नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि जानिया सुनिया विष खाइनु, हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म लभिया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु, जान बूझ कर मैं जहर खा रहा हूँ। ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपकी भजन नहीं किया, क्योंकि महाजन लोग ने यही निर्देशन दिया, प्रहलाद महाराज ने भी यही कहा, कौमारे आचरत प्राज्ञ धर्मान भागवत यह दुर्लभं मानुषंग जन्म यद्यपि अध्रुवम अर्थदम। ये मनुष्य जीवन जो मिला है दुर्लभ है, यदि भी अन्य पशु की शरीर के तरफ पक्षियों के शरीर की तरफ पशु पक्षियों के शरीर की तरफ ये भी नाशवान है, एक दिन इसको भी मृत्यु में मृत्यु कवलित कर लेता है, फिर भी ये विशेष कुछ है इसी जन्म के उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, इसलिए दुर्लभ है, दुर्लभं मानुषं जन्म। 84 लाख जोनि में भटकते भटकते कई करोड़ों साल के बाद आपको ये शरीर मनुष्य का मिला है, और इस मनुष्य शरीर अन्य पशु पक्षी के शरीर की तरफ आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं है, इस शरीर में ही भगवान की भजन किया जा सकता है, भगवान हरि भगवान श्री कृष्ण की भजन करना यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और इस भजन तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, कुमार अवस्था से 5 साल की उम्र में जैसे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसी समय से ही प्रहलाद महाराज तो माँ की गर्भ से ही शुरुआत कर दी अपना भजन है। तो इसीलिए मनुष्य जन्म है, प्रभुपाद जी ने इसी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो देश वो प्रसंग महाभारत के वन पर्व से कि किस प्रकार यक्ष ने यह घटना कहाँ पर हुआ था, वृंदावन के किस वन में, काम्य वन में, जो पांडव लोग ने वहाँ पर काम्य वन में रहते थे तो उसी समय आज भी वो स्थान है स्पॉट है जहाँ पर जमराज ने ये प्रश्न पूछा था, जमराज की कुंड भी है वहाँ पर है, तालाब है जिस तालाब के किनारे जमराज ने यक्ष के रूप धारण करके वहाँ बैठे थे चुपके वहाँ रुके बैठे थे, और जो पांडव लोग बड़े प्यासी होकर पानी पीने के लिए गए हैं तो उनको रुकते थे, रुको पानी पीने के पहले मेरे प्रश्न की उत्तर देना पड़ेगा, यदि उत्तर नहीं दोगे यार तुम ऐसा ही मनमानी से मेरे आदेश को उल्लंघन करके पानी पियोगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा, लेकिन उनका बात कोई सुनते नहीं है, कोई नहीं सुना, भीम गया पीने के लिए, भीम गला तुम कौन है, तुम्हारे पानी पीने के लिए भी तुमसे अनुमति लेना पड़ेगा है, देख रहे मेरे कथा तो सुना नहीं तो बोलता अपने बस मतलब तुम अपने जगह पर बैठो बस पानी पीने गया तो धर्मराज स्वयं जमराज थे इसलिए उसकी मृत्यु हो गई, फिर नकुल सहदेव का वही हालत हुआ, फिर अर्जुन गया वो भी ऐसे ही हालत हुआ, कोई सुने नहीं उनको, ये प्यासी थे बोले प्यारी ये नेचुरल लॉ है कि पानी पीने के लिए किसे थोड़ी अनुमति लेना पड़ता है, नहीं तो जमराज परीक्षा कर रहे थे तो इसलिए सब, तो अंत में स्वयं धर्मराज के पुत्र गए, कौन जमराज, जमराज के पुत्र ही है व धर्मराज के पुत्र कौन युधिष्ठ महाराज, तो उनको प्रश्न पूछे युधिष्ठ महाराज शांत शिष्ट ये भक्त ऐसे ही होते हैं कैसे हैं, सत्य गुण में रहते हैं विशुद्ध सत्य, कोई बात को ठीक से समझना समझे ठीक से क्या बोल रहे हैं, युधिष्ठ महाराज बड़े पेशेंस के साथ समझे क्या बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, तो वो थोड़ा धैर्य के साथ सुनना चाहिए ना, रजोगुण होने से धैर्य नहीं होता है, रजोगुण से तुरंत कुछ ही करेगा, रजोगुण व्यक्ति मरेगा नहीं तो मरेगा बस, क्षत्रिय का स्वभाव है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर क्षत्रिय होते हुए भी राजा होते हुए भी उनके पास में धैर्य था पेशेंस थे, हरिदास वर्जी में से एक माने जाते हैं कौन युधिष्ठिर महाराज है, शास्त्र में कहा कि 5 हरिदास वर्जी हैं भगवान के दास के रूप में 500 व्यक्तियों की विशेष ख्याति है, तो उनमें से एक है युधिष्ठिर महाराज है, और कौन गिरिराज सर्व उत्तम हरिदास है, और इसके लिए हनुमान जी भी एक दास हैं और उद्धव जी एक दास हैं नारद जी इस प्रकार पांच हरिदास वर्ज्य माने जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज महान वैष्णव है, हरिदास वर्ज्य है, बड़े सावधान से सतर्कता से जख्य क्या बोल रहे हैं सुने। किम आश्चर्यम, पांच प्रश्न पूछे थे, उनमें से एक प्रश्न है किम आश्चर्यम, ये संसार में क्या आश्चर्य है, सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। तो उसी को प्रभुपाद ने तात्पर्य में कोट करते हैं श्लोक कि अहनी अहनी भूतानि गच्छन्ति यह जमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम, कि प्रत्येक दिन हम देखते कोई ना कोई हमारे पड़ोस में, हमारे संबंध में, आसपास में कोई ना कोई ये शरीर को त्याग कर कहाँ जाता, जमालयम जमराज की घर में, है सम्य मेनिपुर जमराज की घर में जाते हैं, वहां पर उसके पाप पुण्य के विचार किया जाता है। हम प्रत्येक दिन देखते हैं इसको, सुनते हैं, है न्यूज पेपर में पढ़ते हैं, कितना सारा न्यूज आता है कि डेली कितने डेथ न्यूज, और हमारे पड़ोसी में भी देखते हैं सुनते हैं, और हमारे सामने लोग ले जाते हैं सबको किस में रख के, एक बाम्बू बांस के बनाते हैं डोला बनाकर उसके ऊपर रख के उसको कांध में लेकर जाते हैं, और जाने के टाइम क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहकर इसको लेके जाते हैं। सुभाषमान हरे कृष्णा, देखते हैं सुनते हैं और प्रैक्टिकल देखते भी हैं, और उसको लेके भी जाते, कभी कभी हमारा कोई संबंधी भी होता तो उसको लेकर श्मशान में हम स्वयं भी जाते हैं, है कभी कभी हम गंगा अस्थि करने के लिए हड्डी लेकर भी जाते हैं, कहाँ संगम में डाल के आते, तो सब करने पर भी फिर भी भूल जाते कि हमको भी दिन एक दिन ऐसे शरीर त्यागना पड़ेगा। ये युधिष्ठिर महाराज कहते इसलिए कहे कि शेषा स्थावर में इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम, जो फिर भी ऐसा करने के बाद भी ये सबसे आश्चर्य की वस्तु यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद कहते कि यही आश्चर्य की बात है, सभी को सभी केवल ये सीखना चाहते कि आर्ट ऑफ लिविंग वो सिखा रहा है, कौन रविशंकर अपना स्कूल खोले बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, लेकिन आर्ट ऑफ डाइंग कोई सीखना नहीं चाहता। प्रभुपाद भी वही कहते कि शरीर त्यागना कैसे, इसी को पहले सीखो, ये आर्ट को सीखो कि ये शरीर एक दिन छूट जाएगा तो शरीर को कैसे त्यागना, ये कला सीखो, जैसे और दोबारा फिर जन्मृत्यु संसार में नहीं आना पड़ेगा, है बार बार जन्मृत्यु समस्या हमारे पास में क्या है, समस्या यही है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, है बार बार जन्मृत्यु चक्र में जीवात्मा भटकते रहता है, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश करता है, फिर 9 महीने रहता है, फिर उसके कितनी कष्ट दुख होता है माँ के गर्भ में, है ऐसे उल्टे रहता, सिर को उल्टे करके ऐसे बेंड होकर बच्चा कैसे रहता माँ के गर्भ में, सिर और उसके पैर पूरे ऐसे बेंड धनुष आकृति होकर ऐसे ही रहता है, मलमूत्र के पिंड के अंदर में रहता है, और इतने कीड़े इसको काटते हैं, इतनी गंदे स्थिति में रहता है, हैं तो फिर रोता है, फिर प्रार्थना करता है भगवान मुझे यहाँ से निकाल देती है मैं आपकी भजन करूँगा, बड़ा रोता है, रोने भगवान दया करके उसको निकाल देते बाहर, बहुत निकल के पहले बाहर आ जाता तो आ जाता तो फिर वो भूल जाता है, फिर सब परिवार वर्ग संबंधी आए बच्चा देखे लाला आए कोई वो देख रहा है चारों साइड देखा है तो जाल में हाथ लगा इधर लो बस फिर भूल गया, फिर बस मुस्कुराने लगा, फिर दुखने लगा, फिर संसार में फंस जाता है। तो इसलिए ही हमारा कर्तव्य कि प्रभुपाद जी कहते कि मृत्यु के बारे में तैयारी करो, कैसे शरीर त्यागना है उस कला को सीखो, है कैसे शरीर त्यागना, इस शरीर को यदि त्यागने के समय में किसको स्मरण करके त्यागोगे, भगवान को, यंग यंग व्यापी स्मरण भाव त्यजंते अंते कलेवरम तं तवैति कौन्तेय सदा तद्भव भाववापिता, जैसे जैसे चिंतन करके ही शरीर को त्यागोगे आकला शरीर उसी उसी आधार पर बनेगा और ऐसे ही लोग को प्राप्त करेगा, है यदि अंत समय में अंत काले जमांग नित्य स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, भगवान कहते जो मेरे को स्मरण करके ही अंत समय में ये शरीर को त्यागेगा, भगवान के नाम लेते हुए भगवान की चिंतन करते हुए नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ, है हमारा कामना व हमारा बात अंतिम इच्छा ऐसा ही होना चाहिए, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की इच्छा था, क्या इच्छा था, उन्होंने गौरांग महाप्रभु को वरदान मांगे अंतिम समय में महाप्रभु जब उनको मिलने के लिए गए तो मुझे कहे कि महाप्रभु कही कुछ मांगो हरिदास, तो कहे कि मेरी यही इच्छा है नयने धने च हृदय धरिम तब कोमल चरण, नयने हरिमु तब चांद बदन, मुखे उचारिमु कृष्ण चैतन्य नाम, एहि मत इच्छा मोर छाड़िमु पुराण। महाप्रभु मेरे यही इच्छा है, यही वरदान चाहता हूँ, आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते हुए, आपकी मुख चंद्रमा को दर्शन करते हुए, निहारते हुए, बार बार मेरे मुख से कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य कृष्ण चैतन्य उच्चारण करते हुए ये शरीर जैसे छूट जाए। ये केवल हरिदास ठाकुर की इच्छा नहीं, ये सभी की इच्छा ऐसा ही होना, हम सभी की इच्छा अच्छा ही होना चाहिए। अंते नारायण स्मृति, अंत समय में जैसे भगवान को स्मरण कर पाएंगे, यदि कितनी भी साधन भजन किया जिंदगी में और अंत समय में किसको चिंतन करेगा, किसी को और को चिंतन करेगा, अपने पत्नी को चिंतन करेगा, बच्चों को चिंतन करेगा, बराबर किसी चिंतन, जिसको प्रेम किया है तो वही चिंतन में आएगा। जब तक व्यक्ति भगवान को प्रेम करना सिखा नहीं, भगवान को ही प्रेम नहीं किया, सब संसार को छोड़ के भगवान को प्रेम नहीं किया, संसार संसार बोले मिच्छे के लकाल है, लाभ ना हो किचु बढ़ी लंजाल, भक्ति मठा कहते संसार को प्रेम करते करते कोई लाभ नहीं होगा, अंत समय में जमराज के दूत आकर संसार को चिंतन करोगे तो बांधगी लेके जाएगा। यदि कृष्ण की चिंतन होगा तभी कौन आएगा, विष्णु दूत आएंगे हैं, और नहीं तो फिर जमराज के दूत आकर बांध के लेके जाएंगे। इसलिए अंत समय में कैसे भगवान को स्मरण करेंगे, उसी का चिंतन उसके उपाय करना चाहिए। हरिदास ठाकुर तो सारा जिंदगी भर क्या करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, डेली 300,000 नाम जपते रहते थे हैं, डेली कितने 300,000 192 राउंड, तो हमें कितना राउंड जपते हैं हैं, 16 माला, वो भी मुश्किल से होता है, तो कैसे भगवान के धाम में जाएंगे हैं? हमारा इच्छा को भगवान कैसे स्वीकार करेंगे। अंतिम लक्ष्य यही है कि अंत समय में भगवान को स्मरण करते हुए हैं, जन्म कर्म समय दिव्य जन्म कर्म दिव्य लीलाओं में चिंतन करते हुए भगवान के नाम लेते हुए शरीर छूटेगा तभी भगवत धाम जाएगा हैं, तभी हम जन्म के संसार से मुक्त हो जाएंगे, यही जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद जी वही कहते कि इसके लिए प्रस्तुति करो, कैसे अंत समय में भगवान को स्मरण कर पाओगे इसके लिए प्रस्तुति करो हैं। और कृत्रिम रूप में कभी हम सोचते कि भाई ये सब क्या कैसे स्मरण होगा, संसार को यदि भी कोई छोड़ भी देता है, संसार छोड़ चला गया, छोड़ दिया बस बैरागी बन गया हैं, बैरागी बन के वृंदावन भी पहुंच भी गया, कहाँ सब छोड़ के कहाँ जाएगा जीव। रामानंद राय को पूछे महाप्रभु ने, सर्व त्यजी जीवेर कहाँ बास, सब त्यागने के बाद संसार त्याग कर संन्यास ले लिया, सब कुछ त्याग के चला गया, भजन करने के लिए कहाँ जाएगा हैं, श्री वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रास, श्री वृंदावन धाम में जाकर जहाँ पर भगवान की नित्य लीला अभी भी चल रहा है वहीं आश्रय लेना चाहिए हैं। लेकिन वहाँ भी आश्रय लेकर आश्रय लेने के बाद क्या करेगा, यदि संग नहीं है, भक्त के संग नहीं है, तो फिर वो भी वहाँ भी रहकर भी सभी प्रकार के अपराध करते रहेगा, धाम अपराध। धाम में रहने पर भी 10 प्रकार के धाम अपराध से बचना पड़ता है। सबसे पहला धाम अपराध क्या, क्योंकि हम सोचते सब छोड़ के चले जाएंगे वृंदावन, अब वृंदावन में जाएंगे गोस्वामी की तरफ नहीं रहेंगे, कैसे रहेंगे गोस्वामी लोग कैसे आए थे, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडल पति श्रेणी सदा तुच्छवत भूत्वा दीन गणेश कई करुणया कौपिन कंथाश्रित, राजा की सब संपत्ति राजा के समान सब धनाढ्य व्यक्ति थे बड़े हैं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हुसैन शाह के दरबार में प्रधानमंत्री अर्थमंत्री, रघुनाथ दास गोस्वामी राजा के लड़के थे हैं, उनके पिताजी राजा के समान, 12 लाख स्वर्ण मुद्रा उनकी इनकम था हैं, और गोपाल भट्ट रघुनाथ भट्ट भी अपने पिताजी के एक एक लड़के थे हैं, सिर्फ वंश एक ही एक ही लड़के थे माता पिता के, वो भी कोई गरीब ऐसे भीख मांगे परिवार से नहीं आए थे, राजाओं के समान संपत्ति को त्याग कर आकर यहां पर वृंदावन के वृक्ष के नीचे कंथा कौपिन में कौपिन धारण करके ऐसे ही रहते थे, छोटा बाप में घर छोटा कुटिया बनाकर रहते थे। हम सोचते कि ब्रजवासी के ब्रजवास कैसे करेंगे, पहले हैं पहले वृंदावन में मकान बनाएंगे अच्छा से, अच्छा मकान बना के एसी लगा के फिर एसी लगाएंगे सो मॉडर्न फैसिलिटी रहेगा हैं, इसकी बात में फिर उधर जाकर सब प्रकार शारीरिक सुख मिलने के बाद फिर भजन करेंगे हैं। आप जितने हैं बुद्धिमान हो, आपसे ज्यादा बुद्धिमान कौन, भगवान की बहिरंग शक्ति माया है। आप सोचते कि जब बड़े ऐसी कपड़ा बना के कुटिया भी बनाएंगे मिट्टी का पूरा एकदम गोबर मिट्टी मैंने ऐसे अंदर में ईट रहेगा, ईट रहेगा दीवार दीवार ईट के उठेगा, लेकिन उसके ऊपर गोबर भी लिप देंगे कि देखा नहीं क्या कुटिया ऊपर से, और पहले ऊपर के ऊपर में ऐसे ही मैंने क्या प्लास्टर होगा ऐसे घर जैसे प्लास्टर करके रूप को सन के समाधि को इमिटेट करके ऐसा बना देंगे, लेकिन उसके ऊपर फिर दिखाने के लिए ऊपर से डाल देंगे थोड़ा घास है, ये घास की कुटिया दिखाई पड़े, लेकिन अंदर में क्या लगा होगा एसी है, एसी लगाया होगा और हीटर भी ठंड का टाइम हीटर भी लगेगा है, और कोई सेवक भी रहेगा ना, कुकिंग थोड़ी बाबा जी महाराज कुकिंग कहाँ करेंगे, कोई कुकिंग करके वो भी कुकिंग करने के लिए सर्विस करने के लिए सब रहेंगे है। तो ऐसा ही यदि हम शारीरिक सुख के साथ में शरीर को पहले कंफर्ट करके सब प्रकार का शारीरिक सुख के साथ भजन करना चाहेंगे हैं, ऐसे भजन नहीं होता है, ऐसे भजन करने से ही माया हमको चीटिंग करेगा। भगवान बहुत बुद्धिमान है, जानते हैं कौन मेरा सच्चे सेवक है, सेवा करने की इच्छुक है। यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते प्रत्येक क्षण में भी हमको परीक्षा देना पड़ता है, माया भी टेस्ट कर, माया का दो काम है, यदि भक्ति करना चाहते तो आपका आवरण करना, आवरण का शक्ति है आवरण करना चाहेगा है, कहेगा ये अच्छा नहीं है, ये सो क्या कर रहे, भोग करो जितने समय मिला, चार्वाक मुनि के शिष्य बन के जितनी संभव इसको इंद्रिय तृप्ति करते रहो है, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत यावत् जीवेत सुखं जीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनरागमन भवति, कौन जानता है शरीर भस्म हो जाएगा क्या होने वाला, जितने समय है इसको भोग करो अच्छा से है, यदि इससे तुम्हें आप मति भी आपका इंटेलिजेंस के माध्यम से इसको परास्त करके आगे बढ़ा, नहीं नहीं ये भोग नहीं, ये मनुष्य जीवन भजन के लिए है, हैं तो फिर वो आगे बढ़ेगा, फिर उसकी परीक्षा करेगा कहाँ आगे बढ़ रहे हो कितनी स्टेज तक। आप जब भजन करते रहोगे प्रत्येक क्षण में प्रत्येक स्तर में आपको परीक्षा भी देना पड़ता है, कौन परीक्षा करती है, माया देवी, उसकी काम है उसको परीक्षा करना एक स्टेज में आगे के जानने के लिए है, श्रद्धा फिर साधु संग भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, ये सब एक एक स्तर में प्रत्येक स्तर में आपको परीक्षा देना पड़ता है। अनर्थ निवृत्ति ऐसे कोई स्टेज नहीं कि जहां पूरा अनर्थ समाप्त हो जाते हैं, ये अनर्थ कहां तक रहता है, भाव स्तर तक भी रहता है अनर्थ, ये अनर्थ निवृत्ति जो एक स्टेज बीच में कहा गया, ये नहीं सोचना कि अनर्थ निवृत्ति खत्म हो गया बस, अनर्थ निवृत्ति एक स्तर आ तक खत्म हो गया बस इसके बाद नहीं, अनर्थ सब समय रहता है, अनर्थ शुरू से ही है और भाव तक जब तक आप पूरा प्रेम भगवान के चरण में शुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं किया तब तक ये अनर्थ आपके साथ रहेगा है। ऐसे चक्रवर्ती पाद कहते कि माधुर्य कादंबी में ये अनर्थों के कई स्तर होता है, अनर्थ की एकदर्शवर्तिनी बहुदेशवर्तिनी और प्राय की पूर्ण है, फिर अत्यंतिकी निवृत्ति अनर्थ निवृत्ति सुख स्तर कहा गया। जब भजन हम करते तो पहले प्रारंभ से गुरु से दीक्षा लेकर भजन हरे कृष्ण मंत्र जब प्रारंभ कर दिए भजन किए, जो हम प्रयास करते हैं शुद्ध भजन करने के लिए, ये भजन क्रिया की अंत में प्राय 25% भजन क्रिया के माध्यम से गुरु से दीक्षा लेकर चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करके प्रयास करने से 25% अनर्थ चले जाते हैं, लेकिन आस्ते आस्ते जब हम निष्ठा के स्तर पर आते हैं तभी 50% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। किस स्तर पर, निष्ठा के स्तर पर 50% अनर्थ चले जाते हैं हैं, तभी हमारे पास में रुचि उत्पन्न होता है। निष्ठा माने हम एक जगह बैठकर मेरे माला कंप्लीट करना ही है हैं, सिद्धांत ये ले लिया अपना डिटर्मिनेशन के साथ ये निर्णय कर लिया, नहीं मैं एक जगह पर बैठ के मेरे 16 माला जब तक खत्म नहीं हुआ मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, कि मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं या कुछ भी पीऊंगा नहीं जब तक मेरी माला कंप्लीट नहीं होंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा के साथ जो हम करते हैं है? तो निष्ठा, निष्ठा के स्तर पर आने से साधक की 50% अनर्थ चले जाते हैं है? इसको कहते बहुदेश वर्तिनी, स्तर पर आ गया 50% अनर्थ चले गए। और आगे जो बढ़ा फिर रुचि, निष्ठा के बाद क्या आएगा? रुचि। अभी टेस्ट नहीं, कोई नाम जब नहीं, नाम कोई टेस्ट होता है, कोई टेस्ट आता नहीं, लेकिन जब निष्ठा होगा तो आस्ते आस्ते उसका रुचि टेस्ट बढ़ेगा। और टेस्ट के स्तर पर जो रुचि आएगा तभी व्यक्ति स्वतस्फूर्त भाव से भगवान के प्रति आकर्षित हो सकता है। उसी से रागानुग भक्ति के स्तर वहीं से प्रारंभ होती है। कहाँ से? टेस्ट से। जब आपकी टेस्ट आ गया, रुचि आ गया है, तभी फिर रुचि, फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये फिर 25% अनर्थ चले जाते हैं। और जब भाव के स्तर पर आने पर फिर भी पूर्ण, मैंने पूर्ण जो अनर्थ जाते कहते कि 95% अनर्थ चले जाते हैं भाव के स्तर पर, फिर भी 5% रहता है, है? इसलिए भाव के स्तर पर भी साधक को पतन होने का संभावना रहता है। साधक फिर भी पतन हो गया, भरत महाराज भाव के स्तर पर थे फिर भी पतित हो गए हैं। अरे प्रत्येक स्तर पर आपको परीक्षा देना पड़ता है, कहाँ उठे हो, कहाँ तक गए, कहाँ तक गए, भाव पहुँच के प्रेम है। माया भी परीक्षा देती, हरिदास ठाकुर को भी परीक्षा ली, छोड़ दी, थोड़ी परीक्षा नहीं है ना, उनको बेस्या भी आकर परीक्षा की, फिर कौन परीक्षा किया, स्वयं माया देवी आकर परीक्षा ली, लेकिन सारे परीक्षा में वो पास होते गए, लेकिन उनको गौरांग महाप्रभु की विशेष कृपा था। इसलिए माया को जब हम अतिक्रम करना चाहते हैं, भजन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपा किसकी चाहिए, सहायता किसकी चाहिए? भगवान की। भगवान कहे हैं, माम एवजे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया, इसको कोई अतिक्रम करने वाला नहीं है, मेरा ही माया है, मेरे सहायता बिना इसको कोई अतिक्रम नहीं कर सकता, कितने बड़े व्यक्ति कितना पूरे प्रयास कर ले। इसलिए जब तक हम अपने को बड़ा दैन्यता के साथ भगवान के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं, आप अपने को ऐसे ही नहीं सोचते कि मैं अक्षम हूँ, मैं पतित हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, प्रभु रोता नहीं है कृष्ण के पास में, चरण में, तब तक माया से नहीं छूट सकता है। इसलिए शरणागति के सारे कई प्रयास प्रार्थना में भक्ति विनोद ठाकुर हमको सिखाए, नरोत्तम दास ठाकुर सिखाते हैं कैसे रोना चाहिए, किसके चरण में, कृष्ण के चरण में, निज बड़ बुद्धि प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हारा इच्छा रे अच्छी निर्भर करिया, तुम्ही तो रक्षक आर पालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं आ रे, प्रभु आप ही मेरी पालक हो, मेरी रक्षक हो, आपके चरण के अलावा दूसरे गति नहीं है। ऐसा केवल कपटता से नहीं, पूरे दैन्यता के साथ भगवान के चरण में जब तक जीवात्मा रोता नहीं है, माया से नहीं छूटने वाला, माया फिर उसको पकड़ कर परीक्षा करने आएगा, पकड़ लिया फिर मर जाएगा। माया बहुत शक्तिशाली है, मम माया भगवान कहे। इसलिए हमें हमेशा भगवान के शरण में रहना चाहिए है? संसार के लिए जो रो रहे हैं ऐसे ही रोना चाहिए, किसके लिए, कृष्ण के लिए है? संसार जे मत प्रीति आछे अमार, से मत प्रीति हो चरणे तुमार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जैसे संसार में मेरे मन अभी लगा हुआ है, मेरे परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, ऐसा ही ममता आपकी चरण में हो जाओ, हो जाए ममता है। भक्ति की कई जो डेफिनेशन व परिभाषा होती हुई भी एक परिभाषा है कि अनन्य ममता विस्मयी ममता प्रेम संगता है भक्ति इति उच्यते प्रहलाद जनक भीष्मी। प्रहलाद जनक भीष्मी जितने भी सब बड़े बड़े महाजन भक्ति इसको कहते हैं, ये भक्ति की परिभाषा क्या कहे, अनन्य ममता कृष्ण ही, कृष्ण में अनन्य ममता हो जाना, जैसे संसार में ममता हो जाता है, ममता क्या समझ रहे, स्नेह, लेकिन इस स्नेह की जब पूरा एकदम गाढ़ हो जाता है, ममता हो जाता है अपने बच्चों में, फिर भूलना मुश्किल हो जाता है, जब ममता नहीं होगा तब तक भूल फिर भूल जाते हैं। तो कृष्ण में ऐसे ममता हो जाना, प्रेम हो जाना, एक क्षण भी शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण भी, हम तो हम सोचते कि शून्यायतम जगत सर्वं है, हमारे परिवार के किसको प्रेम करते तो उसी के विहीन कोई यंग लड़का है तो किसी अपने प्रेमिका की चिंतन कर रहा है, पर उसके बिना मेरा जीवन बेकार है। वह कोई माता है, कोई अपने लड़की पर छोटा बच्ची को प्रेम कर रहा कि उसके बिना मैं कैसे जीऊँगी, और रोएंगी, इसका डेथ हो जाता है। जैसे इनकी सुजोग की पत्नियों की डेथ हो गया, उसके राजा का तो ये रो रहे हैं। ऐसा ही ममता भगवत भक्ति ठाकुर कहती, संसार में जो ममता है उसी ममता कहाँ होना चाहिए, भगवान कृष्ण में। जैसे वो चिंतामणि की वेश्या की प्रति आसक्ति था, किनकी, किसका था, बिल्वमंगल ठाकुर के, वो केवल परिवर्तन की, वही ममता जो चिंतामणि के प्रति थी वेश्या के प्रति, वही ममता फिर किसके प्रति ट्रांसफर किए, कृष्ण के प्रति, तभी महान भक्त बने। ऐसे भगवान भक्तिवन ठाकुर आज गीत में गा रहा था, इसलिए भक्तिवन ठाकुर कहते कि ऐसा ही कृष्ण के चरण में समझिए, संसार क्या है, संसार कुछ भी नहीं है, ये संसार संसार करके सारा दिन जिंदगी बिताना वृथा है, कोई किसी के नहीं है, सब आए अपने ड्रामा के स्टेज पर, जिसका रोल खत्म हो गया वो अपने चले जाएगा, रोल खत्म हो गया बस निकल गया स्टेज से चला गया है, तो ये कोई किसी के नहीं होते, लेकिन हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, वही परिवार के बारे में, परिवार मैंने बच्चों के बारे में, ये से संसार के लिए ऐसा ही ममता यदि कृष्ण के चरण में हो जाए तो फिर हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान के प्रति जब ममता नहीं आएगा, हम यदि सबसे प्रेम की वस्तु कृष्ण को नहीं समझेंगे तो अभी हम कहाँ से अंत समय में इनको चिंतन कर पाएंगे, अंत समय तो वही चिंतन होगा जो हमका हमारा सबसे प्यारा है। कोई बच्चा को प्यार प्रेम करता था तो जामिल कम से कम वो बच्चा का आ गया ध्यान, जब मैं देखकर तुरंत चिल्लाने लगा, लेकिन नाम रखा रख दिया था, भगवान ने चांस दी कि बचपन में थोड़ा भक्ति किया था, स्वल्प अपीयस्य धर्मस्य त्रायते महोत भैया, बड़े बड़े विपद से बचा लेता, थोड़ा बहुत भक्ति यदि किया कोई किया, लेकिन हमें चांस नहीं देखना, और जब मिले तो हम भी सेकंड चांस नहीं देखना, हमें अभी से प्रस्तुत करना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे मरना भी सीखना चाहिए, ये शरीर को कैसे त्यागना सीखना भी चाहिए, कैसे त्यागना, अंत समय में भगवान को स्मरण करते हुए कैसे शरीर त्यागा जाए, हैं? ये यदि नहीं कर पाया और कितने भी वृंदावन में जाकर वो कोई बाबा जी पर क्या कोई वो सिद्ध प्रणाली ले लिया, बाबा जी भी बनाया, बाबा जी बन के भी कोई कुछ कर रहा, देखो बाहर में क्या परमहंस की भेष पहन लिया और घूमते रहा, और अंत समय में फिर कोई प्रेमिका की चिंतन किया तो क्या होगा, भैंस लेके पहुंचेगा भगवान के पास में नहीं, भगवान सब जानते हैं, किसी दिन को चिटिंग नहीं कर सकते, हर बार कलयुग में सब चला गया, धर्म की चार पैर चला, चार पैर से तीनों पैर तो चला जाएगी, लेकिन एक पैर अभी तक है, क्या सत्य है, ये छुपेगा नहीं, घूम फिर के कहीं भी ना कहीं सामने आ ही जाएगा, ये सत्य नहीं छुपने वाला है। तो इसलिए ये भैंस कोई हरिदास ठाकुर के एक सिद्ध प्रणाली स्वीकार करके कोई गुरु ने जब तभी भगवान ने उनको उद्धार किया नहीं, सारा जिंदगी बैठ के नाम जपते रहे, उसी से महाप्रभु प्रसन्न हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गृह थाको बने थाको सदा हरि बलि डाको। तो इस प्रकार चूंकि धर्म हरे राम संकीर्तन को अपनाइए, और अपराध शून्य हयाल कृष्ण नाम, अपराध शून्य होकर जब भगवान के नाम ले पाओगे, दस नाम अपराध से बच पाओगे, और निरपराधे नाम लई ले पाए प्रेमधन, प्रेमधन कैसे मिलेंगे भगवान के चरण में, निरपराध से अपराध शून्य होकर जब हम नाम लेंगे, विशेष रूप में दो अपराध, ये दोनों त्यागना बड़ा मुश्किल होते हैं, दस नाम अपराध से पहला अपराध कौन सा, वैष्णव की निंदा करना, जो जीवन को समर्पित किए हैं, हम वैष्णव के समाज में रहते हैं, हमेशा दूसरे का बुरा ही देखना ये आदत हो जाता है, वो ऐसा है ये ऐसा है वो ऐसा है, ये इससे अपराध होता है वैष्णव निंदा। तीसरा गुरु को साधारण समझना और उनकी आज्ञा को अवज्ञा करना, हाँ ये दो अपराध जब हम करेंगे तब आपको फिर हम भगवान चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अन्य अन्य अपराध भी आस्ते आस्ते चले जाते, लेकिन मुख्य रूप में ये दो अपराध को त्यागना, और धाम में कोई रहना चाहता तो जैसे वृंदावन में तो उसको फिर धाम अपराध से सबसे पहला अपराध ही गुरु का चरण में अपराध, ये नाम अपराध से तीसरे अपराध होता है, गुरु को साधारण समझना आज्ञा को अवज्ञा करना, गुरु आदेश को अवज्ञा करना, धाम अपराध से पहला अपराध है, धाम अपराध जो देखो दस नाम धाम अपराध गुरु की आदेश की हेला स्वतंत्र रूप में जाएगी धाम में वास करना, गुरु आदेश को उल्लंघन करके धाम में रहना है, गुरु आदेश को उल्लंघन करके धाम में रहना। हमारे परंपरा में ऐसा ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहे कि अरे दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव प्रतिष्ठा र भरे निर्जन र घरे तब हरिनाम केवल कई टब। दो का आवाज है, एकांत में घर में मैंने राधा कुंड में किनारे रहकर भजन करना चाहता है, जो महाप्रभु ने कहा कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो ही मोर नाम, ये कौन करेगा? ये तो महाप्रभु की वाणी है ना, वो महाप्रभु कहे कि प्रत्येक घर में गांव में शहर में सर्वत्र प्रचार होगा हरिनाम का, और तुम कुटिया बना के यहाँ बढ़िया तो वहां प्रचार कौन करेगा? जब महाप्रभु के आदेश को उल्लंघन करने का ना, फिर आप आस्ते आस्ते माया उनको क्या करता है, जकड़ लेता है। गुरु आदेश को उल्लंघन किया, प्रभुपाद प्रभुपाद ने भी कहा कि कई किसको नहीं एनकरेज किया कि राधा कुंड में रह के भजन करने के लिए, एनकरेज कर किसको एनकरेज किया इस कर्म में? एक को बाबा जी दिखा दिए थे प्रभुपाद ने मायापुर में, एक शिष्य को जो कैंसर हो गया था, कैंसर हो जाने के कारण और डॉक्टर बोल दिया 6 महीने का अंतर डेथ हो जाएगा, और प्रभुपाद जी के पास बहुत आकर रोने लगा। प्रभुपाद जी कहे कि ठीक है और तुझे ये मंत्र दे जपो और हरे कृष्ण मंत्र 7 बार डेली 2 लाख मिनिमम जपना, 3 बार गंगा में स्नान करना, मायापुर में कहे 3 बार गंगा में स्नान करना, राधा माधव की प्रसाद तुमको दिया जाएगा, मैं व्यवस्था कर दूंगा, एक टाइम तुमको प्रसाद मिलेगा हैं। गंगा स्नान कर 2 पहर को एक टाइम प्रसाद खा के डेली 2 लाख नाम जपना, प्रजल्प नहीं करना, किसी बातचीत नहीं करना, बस हरे नाम करते रहो। तो कैंसर हो गया था तो बड़ा सीरियसली बहुत कर रहा था जब, तो लेकिन जो भजन करते रहा 6 महीना चला गया, डॉक्टर बोला तो 6 महीना मर जाएगा, कुछ नहीं हुआ। गंगा पानी पीता था, राधा माधव के प्रसाद खाता था, गंगा पानी पी के रहता था, और दिन रात बड़ा सीरियसली मर जाएगा इसलिए बहुत भजन करता था। 6 महीने चला गया, 1 साल बीत गया, तो बोला था कि जो कैंसर का सब कष्ट हो रहा था वो तो और मैंने पेन भी नहीं हो रहा है और बड़ा ये सुस्त दिख रहा है। तो प्रभुपाद ने जो आए 1.5 साल बीत गए, फिर प्रभुपाद आए, प्रभुपाद वो डॉक्टर बोला था मैं 6 महीने में मर जाऊँगा, तो कुछ हुआ नहीं, अभी 1.5 महीने चला गया, 1.5 साल चला गया। तो प्रभुपाद ने दिस इज द पावर ऑफ होली नेम है, ये होली नेम की पावर है, राधा माधव के महाप्रसाद खा रहे हो, गंगा में 3 बार स्नान कर रहे हो, गंगा पानी पी रहे हैं और भजन कर रहे हैं, ये दिस इज द पावर व्हाट है, दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट डॉक्टर दास यू आर कृष्णदास। लेकिन बोला प्रभुपाद थोड़ा सा मैं जाऊंगा अमेरिका दोबारा थोड़ा टेस्ट करके देखा देखता हूँ, और डॉक्टर जो मतलब बोला 6 महीना में मर जाऊंगा तो ये कुछ नहीं हुआ, थोड़ा टेस्ट करके देखता हूँ क्या हो रहा है। प्रभुपाद बोला नहीं जाना नहीं तुमको अमेरिका, तुमको मैं बाबा जी ने निर्देशन दिया यहाँ बड़ी भजन करना मायापुर में, कहीं जाना नहीं, धाम छोड़ के नहीं जाना। लेकिन माना नहीं, प्रभुपाद चला गया, बोला थोड़ा अमेरिका पहुँच गया, जाके डॉक्टर को जो टेस्ट, डॉक्टर भी हैरान हो गया, बोला अरे ये व्यक्ति का कहाँ चला गया, कैंसर है ही नहीं, कैंसर समाप्त हो गया। जब इसे पता चला कि कैंसर खत्म हो गया, फिर दोबारा प्रभुपाद के पास में है, वो कहीं बस माया के संसार में फिर घूम गया। माया ऐसे ही कितनी शक्तिशाली है, ट्रिक आपको कर सकता है, भजन करने पर भी आपको बार बार प्रलोभन दिखाएगी, ये ले लो वो ले लो ये ले लो, पूजा मान प्रतिष्ठा, ये सब माया के टेस्ट से पाप जब वही पास कर सकता है जिसको कृष्ण चाहेंगे, जिसको जो अपने गुरु को बड़े निष्ठा के साथ गुरु की सेवा कर रहा है तो उसी को कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण किसको कृपा करेंगे है? जो अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए लगा हुआ है, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जस्य अप्रसादा नगति कुतोपी, जिसको हृदय में स्वीकार करते हुए गुरु मुख पद्म वाक्य चितिते करिया ऐक्य आरण करिय मने आशा श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, इसको जीवन में उतारने के लिए गुरु आदेश को जो संकल्प ले रखा है, श्री गुरु चरण पद्म को पकड़ के रखा है और जानता है कि मैं गुरु को प्रसन्न करके ही कृष्ण को प्रसन्न कर पाऊंगा, तो वो फिर माया से बच सकता है, दैन्यता तभी आएगी, दैन्यता है नहीं। और कभी कभी शिष्य सोचता कि मैं गुरु से भी आगे बढ़ गया हूँ है ना, ज्यादा जानता हूँ, शास्त्र को गुरु क्या जानता, कुछ नहीं मैं जानता हूँ इतना, फिर गुरु की कमियां देखना शुरू करेगा तो फिर क्या होगा, तभी माया पर समझ गया ये कैंडिडेट बन गया मेरा, उसके पास जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखे कि सभी को ऐसा ही युधिष्ठिर महाराज जैसे यक्ष को प्रश्न के उत्तर दिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति ये संसार में मृत्यु को वरण करता है, लेकिन हम भूल जाते हैं हमको भी एक दिन ऐसे मृत्यु कबलित कर लेगा और मृत्यु के लिए प्रस्तुत नहीं करते हैं, हम प्रस्तुति नहीं करते हैं। प्रत्येक जीव का ये कर्तव्य है कि अपने मृत्यु की के लिए प्रस्तुति करे अभी से ही। मृत्यु कभी भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं कि आप बुढ़े हो गए तो ही मरोगे, नहीं, कभी भी कुछ हो सकता, किसी का भी। अभी मैं पढ़ा था इंग्लैंड में एक व्यक्ति था प्रभुपाद जी के संग, प्रभुपाद डिसेबल था, प्रभुपाद से दिखा लिया था, और रथ यात्रा में लंदन रथ यात्रा में वो एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हुआ, तो वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसको एक ट्रक मार दिया था, गाड़ी त्याग दिया था, है। लेकिन अभी भक्तिचारू महाराज की वो शिष्या है, एक लेडीज शिष्या है, तो उसने भक्तिचारू महाराज से बात करते करते से कोई पूछ रहे थे कि तुम्हारा प्रीवियस लाइफ कुछ कैसे क्या था क्या, तो थोड़ा सा सोची, सोच की तुरंत बोली कि मैं प्रभुपाद ने पिछले जन्म में प्रभुपाद डिसाइपल था, और मैंने मेरा नाम यह था, और मैंने वो विशेष एक मैंने वो रथ यात्रा में एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मृत्यु हो गया था, और मैंने उस मृत्यु के समय में वो जब मैं ब्रह्मचारी था एक लड़की के प्रति मेरी आसक्ति था, जब ट्रक मुझे वही लड़की की चिंतन कर रहा था तभी तो ट्रक मुझे मारा था, और इसीलिए मैं इस जन्म में क्या बनी, ये लड़की का शरीर मुझे मिला है। तो इसको ये लोग फिर रिसर्च करने लगे उसके बाद के ऊपर, लेकिन उसको लेकर गए वो जिसका नाम बता रहा था, जिसकी जिस लड़की का, तो उसके वो लड़की तो बड़े उम्र हो गई थी ऐसे बड़ा, लेकिन उनके देखे कि सहज आकर्षण है दोनों में, हैं, दोनों दोनों को देखकर तुरंत इनको आए, एक दोनों के प्रति आकर्षित हो गए, हैं। तो इसलिए जैसे ही हम जैसे सोचोगे जैसे ही ऐसा ही होगा अंतिम समय में, जैसे सोचोगे बस अगला सरी। इसलिए सब अभिमान छोड़ के कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, वो सब छोड़ के हमको किसके लिए प्रस्तुत करना चाहिए, डेथ के लिए, हैं। डेथ के लिए क्या प्रस्तुत करेंगे, कीर्तनिया सदा हरि, ठीक है, और सब कुछ नहीं है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्ते इव नास्ते इव नास्ते इव गतिरन्यथा। जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है किसके, हाँ।
हरे कृष्ण, धन्यवाद महाराज, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये आप जो बता रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज सतोगुणी, सतोगुण था बहुत उनमें, युधिष्ठिर महाराज में बहुत सतोगुण था, और जैसे वो यक्ष ने प्रश्न पूछा तो अर्जुन को किस रूप में देखते हैं, उनके अर्जुन को किस तरह के भक्त मानना चाहिए, अर्जुन तो सखा है भगवान के,
हाँ, तो अर्जुन ने अपने गुण को भगवान की सेवा में लगाया, उसके राजगुण के जो है युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है उसको भगवान की सेवा में लगाया, तो आप भी ऐसे ही लगा सकते हैं आपका गुण को, आपका जो पास में जो गुण है भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, हाँ। अर्जुन भी महान भक्त है, तो सभी लोग ऐसे ही भागवत में जैसे कहा है कि स्थित सत्व प्रसिद्ध थी, भक्ति के प्रारंभ कहाँ से होते हैं, सत्वगुण से प्रारंभ होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास में जो गुण है उस गुणों को भी हम लगा सकते हैं, किसके सेवा में, भगवान की सेवा में। तो क्षेत्रीय होने के नाते उस जन्मगत क्षेत्रीय गुण रहता था, इस युग में कोई जन्मगत अर्जुन नहीं बनेगा, बनेगा कोई, इसलिए इस युग में तो सब जन्म से शूद्र है, तो इसलिए आपको आस्ते आस्ते कौन सा गुण को तक आना पड़ेगा, हैं, सत्वगुण तक। जन्म ना जायते शूद्र संस्कार दीजिए उच्चते वेद पठे भवेद विप्र ब्रह्म जानाती थी ब्रह्म स्तर है, आपको इसमें शूद्र जन्म से ही है, तो आपको कम भक्ति के प्रारंभ करने के लिए कौन सा गुण प्रारंभ होगा, सत्य गुण की स्थिति से। हम प्रभुपाद ने इसीलिए सारे व्यवस्था की है, हम जो चार नियम पालन करेंगे, सभी प्रोग्राम अटेंड करेंगे इसकन के, फिर आस्ते आस्ते हमारा पहले की जो आदत है तमगुण रजगुण है, तमस रजस हईते हई बे निस्तार हृदय अभद्र सब है घुंची बे सवार, प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं अमेरिका में पहुँच कर, पहले कहते कि ये कहाँ आ गया, मैं ये सारे रजगुणी तमगुणी व्यक्ति हम भरे हुए हैं, ऐसे कैसे उद्धार होगा, न यदि आपकी कथा को सुनेंगे, किसको, श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से, भागवत ही बार बार सुने यदि कने काने बार 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 सुने यदि सुने काने बारे बार हृदय रे अभद्र सब होइबे ऐसे कहते हैं। जब बार बार भागवत को श्रवण करके प्रभुपाद जी कहते को गीत में तभी हृदय का जो अभद्र है ये सारे नष्ट होंगे, नष्ट प्रायशो अभद्र येसु। इसके प्रारंभ से हम प्रभुपाद जी को दिया गया विधि को जो ठीक ठीक से पालन करेंगे फिर हम उस स्तर को प्राप्त करते, भक्ति में प्रवेश करने का स्तर है। प्रारंभ से हम कर रहे हैं भक्ति पालन कर रहे हैं लेकिन सच्चे स्तर पर तभी आएंगे जब हमारा सप्तगुण की वृद्धि होगा, जितने सप्तगुण की वृद्धि होगा हम इतने आगे बढ़ते जाएंगे। हैं ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।